दोपहर का वक्त था। हवेली के बड़े आंगन में हल्की धूप फैली हुई थी। ऊपर लगे पुराने पंखे धीरे धीरे घूम रहे थे और पूरे घर में एक अजीब सी सुस्ती छाई हुई थी। ज्यादातर लोग अपने अपने कमरों में थे। रत्ना देवी आराम कर रही थीं और इसी बीच रसोई के पिछले हिस्से में मधु घबराई हुई इधर उधर देख रही थी। उसने जल्दी जल्दी अपनी चुन्नी ठीक की। हल्का हरा लहंगा और लाल चोली पहनी हुई थी। चोली पर छोटे छोटे सुनहरे धागों का काम था। उसके लंबे बाल मोटी चोटी में बंधे हुए थे जो कमर तक आ रही थी। पैरों में चांदी की पायल थी जो चलते वक्त हल्की छन छन की आवाज कर रही थी। शायद इसी वजह से वो बहुत संभल कर कदम रख रही थी। बार बार पीछे मुड़कर देखती, जैसे डर हो कि कोई उसे देख ना ले। उसने धीरे से पिछला दरवाजा खोला ही था कि सामने दूसरी नौकरानी निर्मला आ गई। अरे मधु, कहाँ जा रही है? मधु हल्का चौंक गई। वो बाजार जा रही हूं। अभी? हाँ, रात के खाने के लिए सब्जी कम है ना? निर्मला ने भौहें सकोड़ दी। लेकिन मालकिन तो तुझे ढूंढ रही थी। मधु के चेहरे पर एक पल को घबराहट आई, फिर तुरंत बोली, तू सुन लेना ना बहन, मैं बस आधे घंटे में आ जाऊंगी। निर्मला कुछ बोलती उससे पहले ही मधु जल्दी से वहां से निकल गई। उसके कदम तेज थे लेकिन चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। हवेली से बाहर निकलते ही उसने लंबी सांस ली। सड़क पर हल्की धूप और रात की बारिश से बची मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। मधु ने चुन्नी थोड़ा और सिर पर खींच ली, फिर तेज कदमों से चलती हुई हवेली से थोड़ी दूर बने छोटे बस स्टैंड तक पहुंच गई। बस स्टैंड लगभग खाली था। बस एक बूढ़ा आदमी अखबार पढ़ रहा था और दो बच्चे चिप्स खाते हुए लड़ रहे थे। कुछ मिनट बाद पुरानी नीली बस आकर रुकी। मधु जल्दी से उसमें चढ़ गई। पूरे रास्ते वो खिड़की के बाहर देखती रही। उसकी उंगलियां बार बार घबराकर चुन्नी मरोड़ रही थीं। करीब 20 मिनट बाद बस बाजार पहुंची। बाजार हमेशा की तरह भीड़ से भरा था। सब्जियों की आवाजें, मोल भाव करती औरतें, मसालों और तली हुई कचौड़ी की खुशबू, हर तरफ शोर फैला हुआ था। मधु ने जल्दी जल्दी टमाटर, आलू और कुछ हरी सब्जियां खरीदी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन देखते ही उसका चेहरा फिर तनाव से भर गया। उसने जल्दी से कॉल उठाई। हेलो? दूसरी तरफ से तेज और सख्त आवाज आई। कहाँ रह गई? मधु ने इधर उधर देखा। बस सब्जी ले रही हूं। बहाने मत बनाओ, अभी यहां पहुंचो। उसकी सांस हल्की अटक गई। अगर किसी ने देख लिया तो? मधु, सामने वाले की आवाज और ठंडी हो गई। जितना कहा जा रहा है उतना करो। फोन कट गया। मधु कुछ सेकंड वहीं खड़ी रह गई। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसने जल्दी से सब्जियों का थैला उठाया और बाजार के पीछे वाली सड़क की तरफ बढ़ गई। वो रास्ता धीरे धीरे सुनसान होने लगा। दुकानों की भीड़ पीछे छूट गई। अब वहां पुराने बंद गोदाम थे, टूटी दीवारें और जगह जगह उगी जंगली घास। हवा भी जैसे यहां आकर भारी लगने लगी थी। मधु के कदम धीमे पड़ गए। पायल की आवाज उस वीराने में और साफ सुनाई दे रही थी। तभी सामने एक पुराना लकड़ी का दरवाजा दिखा। वो हिचकिचाई, फिर धीरे से आगे बढ़ी। अचानक अंदर से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेवकूफ, यहां खड़ी क्या कर रही हो? मधु डरकर लगभग चीख पड़ी, लेकिन अगले ही पल सामने वाली औरत को देखकर चुप हो गई। वो कोई और नहीं, अक्षरा थी। उसकी आंखों में वही तेज आत्मविश्वास था। आज उसने काला और गहरा मरून रंग का लंबा अनारकली सूट पहना हुआ था। सूट पर महीन सुनहरी कढ़ाई थी। उसके खुले बाल हल्के कर्ल में कंधों पर बिखरे हुए थे। हाथों में पतली घड़ी, कानों में लंबे झुमके और चेहरे पर ऐसा एटीट्यूड जैसे पूरी दुनिया उसके हिसाब से चलती हो। उसकी नजरें हमेशा की तरह तेज और पढ़ लेने वाली थीं। अक्षरा ने मधु को अंदर खींचते हुए कहा, वहां कोई देखेता तो? मधु अभी भी घबराई हुई थी। मैं संभल कर ही आई थी। अक्षरा ने दरवाजा बंद किया, फिर उसकी तरफ पलट कर देखा। तुम्हारा संभलना मैंने देख लिया। उसकी आवाज में हल्की झुंझलाहट थी लेकिन होठों पर मुस्कान भी। मधु ने धीरे से पूछा, सब ठीक है ना? अक्षरा कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर उसके हाथ से सब्जियों का थैला लेकर एक तरफ रख दिया। पहले रिलैक्स करो। मधु की सांसें अब भी तेज चल रही थीं। अक्षरा उसके करीब आई। इतना डरोगी तो पकड़ी जाओगी। मधु ने नजरें झुका ली। हवेली में सबकी नजरें बहुत तेज हैं। अक्षरा हल्का हंसी, और फिर भी तुम अब तक बची हुई हो। उस बात पर मधु भी हंसने लगी। कुछ पल दोनों बस एक दूसरे को देखती रही। कमरे में बाहर से आती हल्की हवा और दूर बाजार का शोर सुनाई दे रहा था। फिर अक्षरा ने धीरे से कहा, अब बताओ हवेली में क्या चल रहा है? उसके सवाल पर मधु का चेहरा फिर गंभीर हो गया और अगले ही पल दोनों के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस की ऊपरी मंजिल पर बना विशाल केबिन हमेशा की तरह शांत था। कांच की बड़ी खिड़कियों से दोपहर की धूप अंदर आ रही थी और पूरे कमरे में हल्की सुनहरी चमक फैली हुई थी। टेबल पर फाइलों के बीच अब लंच रखा हुआ था, गरम दाल, मिक्स वेज, रोटी और साथ में सलाद। विश्वनाथ अपनी कुर्सी पर बैठा था जबकि शामली उसके सामने, लेकिन आज भी उसका ध्यान खाने से ज्यादा शामली पर था। शामली ने जैसे ही दाल उसकी प्लेट में डाली, विश्वनाथ ने बिना कुछ कहे रोटी का टुकड़ा उसकी तरफ बढ़ा दिया। अपने हाथ से खिलाओ। शामली उसे देखकर हल्का हंस पड़ी। आप ना बिल्कुल बच्चे बनते जा रहे हो, तो बनने दो, उसने मुस्कुराकर कहा। शामली ने सिर हिलाया और उसके हाथ में रोटी दे दी, लेकिन विश्वनाथ ने जानबूझकर खुद खाने के बजाय उसका हाथ पकड़ लिया। ऐसे नहीं, तुम खिलाओ। विश्वनाथ जी, हाँ, ऑफिस है ये, तो क्या हुआ, केबिन मेरा है। उसकी बात सुनकर शामली खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। आखिर उसने अपने हाथ से उसे कौर खिलाया। विश्वनाथ ऐसे खा रहा था जैसे दुनिया का सबसे अच्छा खाना हो। फिर पानी पीने लगा तो गिलास भी खुद उठाने के बजाय शामली की तरफ देखने लगा। शामली ने भौहें चढ़ाई। अब पानी भी मैं पिलाऊं? अगर तुम पिला दो तो क्या बुरा है, उसकी मासूमियत भरी शरारत देखकर शामली ने खुद गिलास उसके होठों तक पहुंचा दिया। कुछ पल बाद वो उसे चुपचाप देखने लगी। विश्वनाथ ने पूछा, क्या हुआ? शामली ने हल्की सांस ली। मेरी इतनी भी आदत मत डालो खुद को। क्यों? कभी मैं दूर चली गई ना तो आपको बहुत मुश्किल होगी, उसकी आवाज अचानक धीमी हो गई। विश्वनाथ का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। ऐसा नहीं होगा, शामली हल्का मुस्कुराई। अगर कभी आपने खुद ही मुझे दूर कर दिया तब? उसकी बात सुनते ही विश्वनाथ ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। पागल हो गया, मैं क्यों तुम्हें दूर करूंगा? शामली चुप रही। विश्वनाथ अपनी कुर्सी से उठकर उसके पास आ गया, फिर धीरे से उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। शामली, उसने बहुत नरम आवाज में कहा, तुम मेरी जान हो। उसकी आंखें सीधा उसकी आंखों में थी। और कोई इंसान अपनी जान को खुद से दूर करके जी सकता है क्या? शामली की आंखें हल्की भर आई। विश्वनाथ ने उसके हाथों को अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया। तुम्हारे बिना ये ऑफिस, ये घर, ये जिंदगी कुछ भी नहीं लगेगी। शामली के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। इतना प्यार मत कीजिए, विश्वनाथ मुस्कुराया। अब तो देर हो चुकी है।